سرخیوں میں
یہ آکاشوانی ہے, پرستوت ہے کارکرم سرخیوں میں. اس کے انترگت سنیے بہار میں ریل وکاس کی بڑھتی رفتار پر چرچا. اس میں بھاگ لے رہے ہیں ورشٹھ پترکار مدن جیڑا اور آکاشوانی سمواداتا کمل کمار پرجاپتی.
ریل گاڑیاں بہار کی یاتایات کی دھوری رہی ہیں, کیونکہ بہار کی ایک بہت بڑی آبادی دیش کے کونے کونے میں ریل گاڑیوں سے یاترا کر کے پہنچتی ہے. اسی لیے بھارت سرکار نے بیتے کچھ ورشوں میں اس بات کو کیندر میں رکھتے ہوئے بہار میں ریل کے ڈھانچے کو سدھارا ہے اور ریل سے جڑی ہوئی وبھن بڑی پریوجناؤں کو شروع کیا ہے, اور بہت سی پریوجنائیں سنچالت بھی کی جا رہی ہیں, چل رہی ہیں, جس سے کہ آگے آنے والے سمے میں ہم ریل کے معاملے میں بہار کی ایک بہت بڑی بدلتی ہوئی تصویر دیکھ پائیں گے. آج ہی کیندری ریل منتری اشونی ویشنو نے نئی دلی سے اور بہار کے اپ مکھیہ منتری سمراٹ چودھری نے پٹنہ جنکشن سے 7 نئی ریل گاڑیوں کا ادگھاٹن کیا. ان میں 3 تو امرت بھارت ریل گاڑیاں ہیں جو کہ بہار کو وبھن دیش کے کونوں سے جڑیں گی. تو آج ہم کارکرم میں بہار میں بڑھتے ہوئے ریل کے ڈھانچاگت وکاس پر چرچا کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کارکرم میں شامل ہیں ورشٹھ پترکار مدن جیڑا, بہت بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں.
جی دھنیواد.
تو سب سے پہلے ہم ایک مول سوال سے ہی چرچا کو شروع کرتے ہیں. بیتے جو کچھ ورش رہے ہیں اس میں کس طرح سے آپ نے بہار کے بدلتے ہوئے ریل ڈھانچے کو دیکھا ہے, اور خاص طور پر جو آج کی یہ 7 ریل گاڑیوں کی نئی پریوجنائیں ہیں جو آج بہار کو سوگات کے روپ میں ملی ہیں, وہ کیسے بہار کی تصویر کو بدلنے میں سہایک ہوں گی؟
دیکھیے, اگر بہار میں ہم ریل نیٹورک کی بات کریں تو ابھی جس پرکار سے پچھلے کچھ سمے سے لگاتار اس پر کام ہو رہا ہے, اس کے دو فائدے میں دیکھتا ہوں. ایک جو تاتکالک فائدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ابھی جو بہار کے لوگ بڑے پیمانے پر دیش کے کونے کونے میں جا کے کام کر رہے ہیں, وہاں پر روزگار کر رہے ہیں, تو ان کو جب وہ اپنے گھر جاتے ہیں, اپنے گاؤں جاتے ہیں, اپنے شہر جاتے ہیں, تو ان کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. اور لگاتار ہم کئی بار میڈیا میں بھی تصویریں آتی تھی کس پرکار ٹرینوں میں ٹھونس ٹھونس کر وہ لوگ جا رہے ہیں, کس کٹھنائی سے وہ جا رہے ہیں. لیکن اب اس کی جگہ پر امرت بھارت جیسی ٹرینیں جو لمبی دوری کی ہیں اور کم کرایے والی ہیں, افورڈیبل ہیں ایک عام آدمی کے لیے, اس طرح کی ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں. 3 ٹرینیں آج چلائی گئی ہیں 3 الگ الگ سٹیز کے لیے, ایک ساؤتھ کے لیے, ایک راجستھان کے لیے اور ایک دلی کے لیے. 12 ٹرینیں پہلے سے چل رہی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو لگاتار وستار ہو رہا ہے, ایک تو تاتکالک فائدہ جو بہار کے لوگ ہیں, پرواسی لوگ ہیں, ان کو ہوگا. اور اگر ہم لانگ ٹرم کی بات کریں تو کئی بار بہار کی آلوچنا اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ بہار میں انڈسٹری کم ہے, وہاں پر لوکل لیول پر روزگار کم ہے. تو اس کا کارن صرف ایک ہی تھا کہ یہ مانا جاتا تھا کہ بہار کے بھیتر کنیکٹیویٹی بہت اچھی نہیں ہے, اور بہار سے دوسرے جگہوں کے لیے, دوسرے سٹیز کے لیے, دوسرے پردیشوں کے لیے کنیکٹیویٹی اچھی نہیں ہے, چاہے وہ سڑک کی ہو چاہے وہ ریل کی ہو. تو ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سڑک اور ریل دونوں پرکار کی کنیکٹیویٹی کو بہتر کرنے کے لیے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. اور پچھلے اگر ہم کچھ سالوں میں دیکھیں تو 4 لاکھ کروڑ کے پروجیکٹ ابھی سڑک اور ریل سے ریلیٹڈ بہار میں چل رہے ہیں. تو جیسے ہی یہ پروجیکٹ پورے ہوں گے, ٹرین تو ایک ترنت چلنے والی چیز ہے, چل جاتی ہے. اب جیسے 1999 کلومیٹر ریل لائن کا یا تو دوہریکرن ہو رہا ہے یا نئی ریل لائن بن رہی ہے, لیکن جیسے ہی یہ کام پورا ہوگا, کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی, تو وہاں پر انویسٹر بھی جائے گا, لوگ نویش کرنے بھی جائیں گے. تو ایک جو تاتکالک فائدہ ہے, جو لوگ باہر رہ رہے ہیں ان کے لیے اچھی خوشی کی بات ہے, وہ آرام سے اپنے گھر جائیں گے. دوسرا جو بہار کا ایک فیوچر ہے, بھوشیہ کے لیے جو بہار تیار ہوگا, بھوشیہ کا بہار تیار ہوگا, تو اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹو ہے.
تو آئیے کیندری ریل منتری اشونی ویشنو کو سنتے ہیں, جنہوں نے اپنے وکتویہ میں بتایا کہ کس طرح سے 33 بڑی پریوجنائیں بہار میں بھوشیہ میں سنچالت ہوں گی جو بہار میں ریل ڈھانچے کو ایک بہت بڑا وستار دینے والی ہیں. آئیے سنتے ہیں.
پٹنہ ریل کم روڈ برج 28 کلومیٹر, منگیر ریل کم روڈ برج 15 کلومیٹر کا, کوسی برج جو کہ بہت پرانا ایک بڑا سپنا تھا وہ پورا کیا, دانیاوان بہار شریف نیو لائن, چندن بانکا نیو لائن, اور ابھی کئی سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. جو پروجیکٹس میں نے نام لیے وہ سارے ختم کمپلیٹ ہوئے, اور ابھی بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں. میرے پاس لمبی لسٹ ہے 33 پروجیکٹس کی. سکری حسن پور نیو لائن, کھگڑیا کشیشور استھان نیو لائن, کرسیلا بہاری گنج نیو لائن, اور اس کے علاوہ کئی نئے سروے چل رہے ہیں, کئی نئے پروجیکٹس کی پلاننگ ساتھ میں چل رہی ہے. یہ بھی لمبی لسٹ ہے جو کہ 27 پروجیکٹس کی لسٹ ہے, جو کہ ابھی کام اس میں سروے ہو کے ڈی پی آر ہو کے اپروول کی اسٹیج میں آ رہا ہے.
ریل لائنوں کا دوہریکرن, نئے ٹرمینل, امرت بھارت اسٹیشن, وبھن ڈھانچاگت پریوجناؤں کو ہم چلتے ہوئے بہار میں دیکھ رہے ہیں. تو ان پریوجناؤں سے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اگر ریل یاتایات بہت مضبوط ہوگا, آدھونک ہوگا, تو نشچت طور پر بہار میں دوسری سمبھاونائیں بھی بھوشیہ میں بڑھیں گی. تو کتنا بڑا ایک پریورتن آنے کی امید ہے بہار میں ان بڑی ریل پریوجناؤں سے؟
دیکھیے, بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کو فائدہ ہے. ایک ٹوریزم جو ہم بات کرتے ہیں, कि बिहार एक टूरिज्म का भी बहुत अच्छा केंद्र है, वहाँ पे बोध गया है, वहाँ पर राजगीर है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार में जिसको देखने के लिए लोग दूर से जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ये सुविधा नहीं है वो सुविधा नहीं है तो लोगों का जाना कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही कनेक्टिविटी बेहतर होगी तो लोगों का वहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर हम बात करें तो हर साल जब रेल का बजट आता था तो ये लिखा जाता कि बिहार के लिए कितना पैसा जा रहा है, तो वो अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें उस समय जाता था 1,000 करोड़ रुपया, आज वही बजट 10,000 करोड़ रुपये चले गया है। अच्छा, ये सिर्फ रेल चलाने तक सीमित नहीं, कि एक तो ये होता है कि आपने ट्रेनें चला दी, लेकिन ट्रेन चला दी अगर आपका स्टेशन अच्छा नहीं होगा, वहां पर सुविधाएं नहीं होंगी, तो फिर आपका टूरिस्ट नहीं जाएगा या फिर जो लोग उसको यूज भी करेंगे उनको लगेगा कि कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन जो अमृत भारत स्टेशन योजना है, 98 स्टेशन बिहार में ऐसे हैं जिनको आधुनिक बनाया जा रहा है, जिनका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। इसी प्रकार पटरी भी है, ट्रेन भी है, लेकिन अगर वो अटक के चल रही है, अगर वो फास्ट नहीं है, सिंगल पटरी है, एक ही पटरी पे दोनों तरफ की ट्रेनें चल रही हैं, तो फिर उससे भी जो यात्रा का समय है बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो एक अप्रोच है सरकार की वो एक समग्र अप्रोच है, वो एक समावेशित अप्रोच है जिसमें सभी पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये चीजें जैसे जैसे आगे इनके रिजल्ट आते जाएंगे तो उसका बड़ा व्यापक असर पड़ेगा, बिहार में टूरिज्म बढ़ेगा। और आज हम जानते हैं कि कई देश, और मगर देश की बात न भी करें दूसरे देशों की, हमारे ही कई प्रदेश ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म से चल रही है, चाहे वो धार्मिक टूरिज्म हो, चाहे वो ऐतिहासिक टूरिज्म हो, या वो चाहे वो पहाड़ों वाला टूरिज्म हो, तो कोई न कोई टूरिज्म वहां पर है और उसी से उनकी बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई आप कहीं भी जाइए लेकिन साल में एक बार अपने देश के पर्यटन स्थल का दौरा कीजिए, तो इसलिए बिहार भी एक अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है।
आइए सुनते हैं रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार को। उन्होंने बताया कि आज जो शुरू हुई अमृत भारत रेलगाड़ियां हैं वो किस क्षेत्र से किस क्षेत्र को जोड़ेंगी और कैसे बिहार के विकास में एक बड़ा योगदान देंगी।
जो अमृत भारत ट्रेनें आज प्रारंभ की जा रही है उसमें से दरभंगा अजमेर के बीच एक अमृत भारत है, एक अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन छपरा और दिल्ली के बीच में किया जा रहा है, और तीसरी अमृत भारत जो आज प्रारंभ की जा रही है उसका परिचालन मुजफ्फरपुर और हैदराबाद के बीच में किया जाएगा। जो अमृत भारत ट्रेनें चल रही है उसमें से सबसे अधिक करीब 15 में से 13 ऐसी होंगी जो कि या तो बिहार से ओरिजिनेट करेंगे या बिहार होकर के गुजरेंगी।
अमृत भारत रेल, ये ऐसी रेलगाड़ियां हैं जो किफायती हैं लेकिन आधुनिक भी हैं। इन रेलगाड़ियों के कॉन्सेप्ट पर आपके क्या विचार हैं, और खास तौर पर बिहार में सबसे ज्यादा अमृत भारत रेलगाड़ियों की जो कनेक्टिविटी है वो रेल मंत्रालय ने दी है, वो कैसे बिहार में एक अफोर्डेबल और एक मॉडर्न रेल ट्रेवल को बढ़ाने में मदद करेंगी?
देखिए, एक अमृत भारत ट्रेन का जो कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है कि ये एक कॉन्सेप्ट किसके पीछे दो बातों पर ध्यान रखा गया था, एक तो ये ट्रेनें लंबी दूरी को कवर करें, दूसरा इसमें ये ध्यान दिया गया था कि इसमें ज्यादा आरामदायक हो और किराया कम हो। तो जो स्लीपर के कोच होते थे, हम एक 3 टियर स्लीपर में एक कोच होते थे जिसमें नॉन एसी कोच होते थे, उन स्लीपर कोच की संख्या बहुत कम होती थी और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती थी। स्थिति ये थी कि अगर एक ट्रेन में 4 डिब्बे हैं तो उसमें जो बुकिंग होती थी वो करीब 10 डिब्बों की बुकिंग हो जाती। तो इस ट्रेन में ये किया गया कि सारी इस ट्रेन को स्लीपर कोच बनाया गया है, चाहे ज्यादा स्लीपर कोच या अनरिजर्व कोच में रखा गया है। मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें सफर कर सकें और लंबी दूरी का सफर तय करें और उनको प्रॉपर सीट मिल जाए, उनको रिजर्वेशन मिल जाए और उसका जो किराया हो वो रिजनेबल हो, वो बहुत महंगा ना हो, उसे अफोर्ड भी कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये जो 3-4 कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर इस ट्रेन को चलाया गया था, और ये भी इसमें ध्यान रखा गया था कि ये ट्रेनें जो समय पहले की जो ट्रेनें थी, पैसेंजर ट्रेनें थी, उनकी तुलना में ये समय कम ले रही है। तो इन 3-4 चीजों से ट्रेनें, नया नया कॉन्सेप्ट है लेकिन ये ट्रेनें काफी पॉपुलर हो रही हैं, काफी लोकप्रिय हो रही हैं। आज जो भी व्यक्ति जाता है तो वो अगर अफोर्डेबल यात्रा करना चाहता है तो अमृत भारत ट्रेन को वो पहली प्राथमिकता देता है। और बिहार की अगर बात करें तो आज अगर 3 ट्रेनों को मिला के 15 अमृत भारत ट्रेनें बिहार के लिए हो गई, तो मुझे लगता है कि जितनी अमृत भारत ट्रेनें अभी तक चली हैं तो सबसे ज्यादा बिहार के लिए चलाई गई है। बिहार के लोग इस मामले में बड़े खुशनसीब हैं और वो जरूरत भी है उनकी, जिस प्रकार से वहां से लोग बाहर जाते हैं और वापस जाते हैं तो उस हिसाब से वहां जरूरत भी है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है और निश्चित रूप से इससे लोगों को फायदा हो रहा है।
और अमृत भारत रेलगाड़ियों की तो हमने बात की ही, लेकिन जो बिहार में स्थानीय स्तर का यातायात है उसे बढ़ाने में पैसेंजर रेलगाड़ियों का बड़ा महत्व है, और बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी, आशाएं थी कि उनके इलाके में पैसेंजर रेलगाड़ियां शुरू हो। तो आज जो पैसेंजर रेलगाड़ियों की शुरुआत हुई है वो कैसे बिहार में स्थानीय यातायात को और मजबूत करने वाली है और किस तरह से लंबे समय से लोगों का ये सपना पूरा हुआ है?
देखिए, दो तरह की कनेक्टिविटी होती है, एक तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं या दूसरे बड़े शहर जाते हैं, दो मेट्रो के बीच में कनेक्टिविटी होती है। इसके अलावा आजकल जो हमारी सिटीज हैं, अगर हम किसी स्टेट की बात करें तो वहां पे जो छोटे छोटे शहर पहले होते थे अब वो बहुत बड़े शहर हो गए। तो बड़े शहर हो गए तो एक शहर से दूसरे शहर लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें अभी तक जो दो शहरों के बीच में, अगर मान लीजिए दो शहर 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की दूरी के बीच हैं, तो उसमें एक बस एकमात्र साधन होता है कि बस से जाएं या फिर लोग अपनी प्राइवेट कार से जाएं। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट मैं देख रहा हूं इस सरकार में कि दो छोटे छोटे शहरों के बीच भी एक ट्रेन चल रही है या तीन शहरों को एक ट्रेन कनेक्ट कर रही है जिसे हम पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, तो इस तरह की आज चार ट्रेनें चलाई गई हैं, तो ऐसी ट्रेनें भी बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक जरूरत है, क्योंकि जो छोटे शहर हैं वो मेट्रो सिटीज में तब्दील होते जा रहे हैं, बड़े शहर बन रहे हैं, मिलियन प्लस सिटी तो बनी रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा आबादी तो हो ही रहे शहरों के। तो ऐसे में अगर दो शहरों के बीच में कनेक्टिविटी का एक साधन एक पैसेंजर ट्रेन भी हो, बाकी जो रोड संपर्क है वो तो होगा ही, और जो लोग सक्षम है वो अपनी प्राइवेट कार से भी यूज कर सकते हैं, टैक्सी भी यूज कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक और अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा शहरों को, चाहे वो बिहार के हों या चाहे किसी दूसरे स्टेट के हों, शहरों को भी आपस में ट्रेन से जोड़ने की जरूरत है, और ऐसे ट्रेन, खासकर ऐसे सर्कुलर ट्रेन चलाए जाने की जरूरत है जो चार पांच शहरों को जोड़ते हुए दिन में दो तीन चक्कर लगाए। तो मुझे लगता है कि इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज चार पैसेंजर ट्रेनें वहां चलाई गई हैं, और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में और भी चलाई जाएंगी।
त्योहारों के मौसम में हमेशा से ही यातायात को और ज्यादा सुदृढ़ करने पर रेल मंत्रालय का जोर रहता है, लेकिन इस बार बिहार के लिए 12,000 नई विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना है, तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा इस बारे में, आइए सुनते हैं।
छठ और दीपावली पे रिकॉर्ड संख्या में 12,000 स्पेशल ट्रेन्स, लास्ट ईयर 7,500 स्पेशल ट्रेन्स की थी, और इस बार प्रधानमंत्री जी ने हमको मार्गदर्शन दिया कि एक नया लेवल लाओ, सर्विस का नया रिकॉर्ड बनाओ। तो 12,000 स्पेशल ट्रेन, जिसमें करीब 10,500 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी हैं, और 150 ट्रेन्स रखी जाएंगी अनरिजर्व्ड, जिससे कि अचानक लास्ट में कहीं से मेजर डिमांड आती है तो वहां पर डिप्लॉय कर सके।
त्योहारों के मौसम में विशेष तौर पर छठ पूजा के समय हमने देखा है कि जो दूसरे राज्यों में काम करने गए हुए हैं बिहार के वासी, वो जब वापस लौटते हैं तो रेलगाड़ियां ही एक बहुत बड़ा साधन होती हैं, और ऐसे में रेल मंत्रालय ने जब इस बड़े स्तर पर रेल सेवा को देने की घोषणा की है, ये कितनी बड़ी योजना आप समझते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि दशहरे से लेकर छठ तक एक बड़ा त्योहारी सीजन देश भर में शुरू हो जाता है, और अगर हम बिहार की बात करें तो वहां पर छठ पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। कल ही प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में कहा कि हम इसको यूनेस्को की लिस्ट में भी लाने जा रहे हैं, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, हर आदमी की कोशिश होती है कि छठ पर वो अपने गांव जाए, अपने शहर जाए, अपने कस्बे में जाए और अपने परिजनों के साथ उस त्यौहार को मनाए। तो इससे क्या होता है कि एकदम ट्रेन की डिमांड बढ़ जाती है, और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, रेलवे पे बहुत ज्यादा दबाव आता है, तो उसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का प्रोविजन था। पहले कुछ कम चलती थी, लेकिन इस बार ये संख्या जो सरकार ने ऐलान किया है, तो 12,000 ट्रेनों का ऐलान किया है। न सिर्फ 12,000 ट्रेनों का ऐलान कर दिया है, बल्कि इस बार सरकार ने यह भी कहा है कि जो ट्रेन से जाएगा और वापस भी आएगा उसको हम 20% किराए में भी छूट देंगे। ये ऐलान भी पिछले महीने कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि इससे लोगों को काफी सुविधा होगी, और उनको ट्रेन में, क्योंकि यहां से बिहार तक का सफर बहुत लंबा होता है, कम से कम 14-15 घंटे का सफर कम से कम होता है अगर फास्ट ट्रेन भी हो, तो ऐसे में अगर आदमी को सुविधाजनक ट्रेन में सीट मिल जाएगी, बैठने की जगह मिल जाएगी, या जो लोग स्लीपर का रिजर्वेशन करा सकते हैं तो उनको स्लीपर में सोने की जगह मिल जाएगी, तो मुझे लगता है कि जो आदमी अपने घर में साल भर काम करके बाहर नौकरी करके त्योहार मनाने जा रहा है और आराम से वो सफर कर सकेगा, तो निश्चित रूप से सरकार का शुक्रगुजार होगा, क्योंकि वो साल में एक बार जाता है और उसमें उसका जो बहुत सारा सामान भी अपने गाँव ले जाता है, अपने घर के लिए ले जाता है, तो सामान जब वो खुद बैठने की जगह नहीं होती तो सामान रखने की जगह तो कहीं होती ही नहीं है, तो वो खुद आराम से भी बैठ सकेगा और उससे अपना जो सामान सूटकेस या बैग उसके हाथ में है उसको भी सुरक्षित तरीके से अपने घर तक ले जा पाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे अगर लोगों को सुविधा होगी तो लगता है कि बड़ी सेवा होगी लोगों की।
बिल्कुल, जो हम जैसा कि बात कर रहे थे विभिन्न परियोजनाओं की, तो निश्चित तौर पर जो 33 बड़ी परियोजनाएं हैं जिन पर काम चल रहा है, और जो अभी जिन परियोजनाओं की शुरुआत हो चुकी है, आगे आने वाले समय में हम इसके बहुत बड़े नतीजे बिहार में देखने वाले हैं, किस तरह से यातायात के सुधरने से बिहार में विकास के नए अवसर खुलेंगे, इसके हम आगे आने वाले समय में जरूर साक्षी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जड़ा जी, कार्यक्रम में आप जुड़े और बिहार में जो रेल परियोजनाएं हैं उस पर आपने विस्तार से चर्चा की।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे बिहार में रेल विकास की बढ़ती रफ्तार पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार मदन जैड़ा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में